इसी तरह एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह के नबी ने किन औरतों का दूध पिया? तो आपने अपनी वालदा का दूध पिया, नर्सिंग मदर जैसे होती हैं। फिर इसके बाद अबू लहब की एक लौंडी थी, सुवैबा उसका नाम था। हम लोग इसको सोविया पढ़ते हैं, लेकिन वाव के नीचे ज़ेर लगा लीजिए तो पढ़ना आसान होगा, वाव पे ज़बर लगा लें, सुवैबा। इन्होंने आपको दूध पिलाया था। इस वक्त इनका जो बच्चा गोद में था उसका नाम था मसरूख, मसरूख। तो गोया के मसरूख अल्लाह के नबी के दूध शरीक भाई बन गए। ठीक है, इसी औरत ने नबी सल्लम के चचा हज़रत हमज़ा को भी दूध पिलाया हुआ था। अब देखिए कैसे खूबसूरत रिश्ते बनते हैं। हमज़ा क्या थे? चचा। लेकिन सुवैबा का दूध पीने की वजह से अल्लाह के नबी और ये दोनों दूध शरीक भाई बन गए और दोस्त भी थे। यही वजह आगे हम सुनेंगे कि जब हज़रत हमज़ा की शहादत हुई तो अल्लाह के नबी को इंतहाई सदमा हुआ, क्योंकि एज फैलो भी थे, दोस्ती भी थी, रिश्तेदारी भी थी। बहरहाल हज़रत हमज़ा को और इसी तरह अबू सलमा एक और सहाबी थे, इनको भी इसी औरत ने दूध पिलाया था। तो अगर कल कोई आपसे ये सवाल पूछे कि अल्लाह के नबी के दो रज़ाई भाई कौन से थे, तो आप बता सकते हैं कि हज़रत हमज़ा भी थे और अबू सलमा भी थे। अब यहाँ तक तो हुआ। अरबों का एक रिवाज था कि जो बच्चे शहरों में पैदा होते थे ना, उनको गांव और देहात की खुली ज़मीन पे भेज देते थे, क्योंकि जो गांव में रहने वाली औरतें होती हैं ना, वो स्ट्रांग होती हैं, आबो हवा भी खुली होती है, वहाँ पे पोल्यूशन नहीं होती, आर्टिफिशियल ज़िंदगी नहीं होती। तो रिवाज था कि बच्चों को पेड औरतों के पास भेज दिया जाता था, उनका माश चल जाता था, वो दूध पिलाती थी और लोग उनको पैसे दे दिया करते थे। इसी दौरान जबकि अल्लाह के नबी सल्लम अब इस लिस्ट में खड़े थे कि आप किस औरत के पास जाया जाए, तो कुछ औरतें अपने गांव से निकली और मक्का की तरफ आईं कि चलो हम जाके शहरों से बच्चे ले आते हैं और कुछ काम कर देते हैं। बनू साद कबीले की कुछ औरतें सारी मिल के आईं, दोस्तें भी थी। उम्मे हलीमा, हलीमा सादिया जिनका हम नाम अब कहते हैं, ये भी उस काफ़िले में थी। इनके बाप का नाम अबू जुबैब था, यानी हलीमा के वालिद अबू जुबैब जो थे ये कुनिया थी, लेकिन नाम उनका अब्दुल्ला बिन हारिस था, जो अल्लाह के नबी के रज़ाई नाना बने। हलीमा के शौहर का नाम हारिस बिन अब्दुल उज्जा था। अब ये थोड़े नाम अभी लग रहे हैं आपको मुश्किल, नाम भी याद करें कोई बात नहीं, लेकिन जो कि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये नाम देना चाहिए, ताकि कुछ तो हमारे जहन के अंदर चीज़ें जाएं कि अल्लाह के नबी के बारे में हम जान सकें। कहती है कि हमारी ऊँटनी बिल्कुल फाकेज़दा थी, भूखी थी, गुर्बत इतनी थी कि बकरी का दूध भी सूखा हुआ है और माँ के जिस्म में भी दूध नहीं है। इनका अपना बच्चा भी था लेकिन दूध नहीं था। कहती कि जो औरतें थीं वो अपनी ऊँटनियों पर सवार होके गईं, हमारे पास से गुजर गईं, और हम अपनी गदी को खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, कमज़ोरी की वजह से वो चल ही नहीं रही। कहती है मैंने अपने शौहर से कहा, सारे अच्छे अच्छे घरों के बच्चे तो ये औरतें ले जाएंगी, हमें क्या मिलेगा। खैर, कहती हैं कि हम चलते रहे चलते रहे। शाम का वक्त था, जब हम मक्का के करीब पहुंचे तो हमने देखा कि हमारी जो दोस्तें थी वो सब घरों के बच्चे ले के भावताव करके, अच्छे अच्छे घरों के, अमीर घरों के बच्चे लेके वापस आ रही हैं। मेरे शौहर ने कहा कि हमें क्या मिलेगा। पहले हमने सोचा कि चलते हैं वापस, लेकिन फिर वही बात है कि आए हैं तो कुछ तो लेके जाएं। कहने लगी जाके देखते हैं क्या होगा, लेकिन आपको पता है कि उनको क्या मिला। एक ऐसा बच्चा मिला कि जिसको पाने के बाद उनकी अपनी दुनिया बदल गई। बरकतों का ऐसा नज़ूल बीबी हलीमा के घर में हुआ कि आज तक इंसानियत हैरान है कि एक बच्चे के वजूद से इतनी खैर मिल सकती है। कहती हैं जब हमारे सामने वो बच्चा पेश किया गया तो हमने सोचा यतीम बच्चा है, और देखिए अब्दुल मुतलिब सरदार थे लेकिन दौलतमंद नहीं थे। अरबों में दौलत सरदारी या हुकूमत और वजारत और अमारत के साथ नहीं थी, बल्कि जो सरदार होते थे वो गरीब ज़्यादा हैंड टू माउथ होते थे, सारा कुछ लोगों को खिला पिला देते थे, उनके अपने हाथ में कुछ भी नहीं होता था, यही हालात थे। लेकिन वो कहती हैं कि जब ये बच्चा पेश किया गया तो हमने कहा चलो ले जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब अल्लाह के नबी उस गद्दी पे सवार हुए, कहती हैं कि आपके सवार होने की देर थी कि मेरी गद्दी जो जाते हुए इतनी आहिस्ता आहिस्ता रींग रही थी, वो तेज़ी से फरलाटियाँ भरने लग गई, कि वही जो मेरी दोस्तें काफ़ी देर पहले की मक्का से निकल चुकी थी, थोड़ी देर में मैंने उनको क्रॉस किया, मैं आगे आ गई। वो कह रही हैं इसको तो देखो, ये अबू जुबैब की बेटी को क्या हो गया है। कहती जब घर आए तो हमारी बकरी जिसके थनों में दूध नहीं था उसके दूध थे थन भरे हुए। हमारे घर में एक दरख्त था वो हरा हो गया, इनके अपने सीने में दूध था, इनके अपने बच्चे भी मौजूद थे, अल्लाह के नबी के साथ इनके बच्चे थे, इनके शौहर का नाम चूँकि हारिस था तो उनसे इनके जो बहन भाई थे अब्दुल्ला, उनैसा, जुजामा, और इन्हीं का लकब शीमा भी था जो बहन थी। इस तरह से ये बच्चे फिर अल्लाह के नबी को हलीमा सादिया के नाते से मिले। यहाँ अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना, तो ये जो आज हम मुसलमान होने के बावजूद छोटे छोटे नट शेल्स में बंद है ना, होल, हम शेख हैं तो बड़े आला हैं, हम जाट हैं तो बड़े आला हैं, गुज्जर हैं तो बड़े आला हैं, आप इस कल्चर में देखें सुनते हुए इन बातों को तो आपको फ़र्क महसूस होगा। हबशन औरत ने अल्लाह के नबी को दूध पिलाया, आज आप और मैं किसी ब्लैक औरत से अपने बच्चे को दूध पिलवाएं, शायद हम सोचे पता नहीं हमारा बच्चा ही ना काला हो जाए। सच्ची बात है, हम जानवरों का दूध पिलवा लेंगे, औरतों का नहीं पिलवाएंगे। उस दौर में लोग अक्लमंद औरतों का दूध पिलवाते थे, अल्लाह से डरने वाली औरतों का दूध, ताकि उसका असर हमारे बच्चों के ऊपर रहे। इस तरह हलीमा के आते ही घर का हाल हुलिया बदल गया। वो आपने पोइम भी सुनी होगी ना, हलीमा तेरी किस्मत क्या है, किस तरीके से लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाते ही खुश होने के दिनों में उनकी हालत बदली। कहती शहर में बातें मशहूर हो गई कि इसको कोई ख़जाना मिल गया, जिधर हमारी बकरियां जाती हैं चरने के लिए वहीं इसकी भी जाती हैं, हमारी बकरियां खाली पेट आती हैं और इसकी बकरियां आती हैं तो उनका पेट भी फूला होता है और थनों में दूध होता है। अब आप सोचिए कि एक नबी का बचपन, उससे एक घर में इतनी रहमतें आईं, तो जब वो बच्चा नबी बना, उसके ऊपर पैगामे हिदायत उतरा, आज अगर उनकी उम्मत उसके एक नक्शे कदम पे चलती है तो क्या आज हमारा ये हाल हो, कर्जों में जकड़ी हुई मारी पिसी उम्मत की हालत। और कहते हैं ना कि बड़ा कड़ा वक्त आ गया है नबी आपकी उम्मत पे। आज अगर हम मुसलमान दुनिया की भी नेमतों से महरूम हैं तो हमने उस नबी के तरीक़ों को छोड़ा हुआ है, हमने उनकी कदर नहीं की। हम कुरान भी पढ़ते हैं लेकिन हमें खुशू और खुदू नहीं मिलता। तो आज अपने सुन्नत के इस सफ़र के साथ साथ ये दुआएं करनी है कि हमने उस नबी की कदर करनी है जिसके साथ ये मामलात हुए और किस तरह से अल्लाह ने थोड़े से दिनों में उसकी हालत बदल दी। 2 साल अल्लाह के नबी हलीमा सादिया के घर में रहे, मुद्दत रज़ात पूरी हुई, हलीमा ने आपका दूध छुड़वा दिया, अल्लाह के नबी खूब मज़बूत और पुख्ता हो चुके थे। हज़रत हलीमा की आदत क्या थी कि हर 6 माह के बाद आपको मक्का ले जाती और आपकी माँ और ख़ानदान के लोगों से मिलवा लाती, वापस बनू सात में आप आ जाते। जब रज़ात की मुद्दत पूरी हुई तो असूलन तो अब ये बच्चा वापस जाना था ना माँ के पास, लेकिन हलीमा नहीं चाहती थी क्योंकि एक तो बच्चे की बरकत बहुत थी, दूसरी मोहब्बत बहुत थी। अल्लाह के नबी को तो जो एक नज़र देख लेता था आपसे बहुत मोहब्बत करता था। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की कि देखें अगर आप इस बच्चे को कुछ अरसा और मेरे पास छोड़ दें तो फ़ायदा होगा, थोड़ा और मज़बूत हो जाए, ज़रा खुले मौसम में पल ले, और मक्का में एक वबा भी फैली हुई है, का ऐसा ना हो कि बच्चे को कोई जरासीम लग जाए। माँ ने कहा ठीक है। इस तरह हलीमा वापस आपको ले आई। 2 साल तकरीबन और पेश हुए, 4 साल की उम्र मुबारक हो गई, बास कहते हैं कि इससे भी थोड़ा सा और ऊपर, यानी 4 से 6 साल की मुद्दत के बीच में। उसके बाद एक वाक्या पेश हुआ जिससे हलीमा सादिया डर गई, और वो क्या हुआ, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस वाक्य को बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी दूसरे बच्चों के साथ बाहर खेल रहे थे, जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, और ज़ाहिर है कि जब फरिश्ते आते हैं तो इंसानी शक्ल में आते हैं, आपको लिटाया और आपका सीना मुबारक चाक किया, यानी काटा आपके सीने को, फिर वहाँ से आपका दिल निकाला और उसमें एक लोथड़ा था उसको निकाल कर जमजम के पानी से धोया, फिर वापस आपके दिल को जिस्म में डालकर और उस जगह सी दिया। अब बच्चों को तो नहीं पता ये क्या हो रहा है। जब ये सारा मंजर हुआ, बच्चे भागते हुए हलीमा सादिया के पास गए, कुतिला मोहम्मद, कुतिला मोहम्मद, के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए हैं। और वाकई जब वो कहती हैं कि आके देखा तो अल्लाह के नबी के चेहरे का रंग बदला हुआ था, हज़रत अनस कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी के सीने पर सिलाई का निशान देखा करता था, यानी जैसे किसी ने सिलाया हुआ है। इस वाक्य से हलीमा सादिया डर गई। कुछ इस किस्म के वाक्यात वो और भी देख चुकी थी आपके बचपन के मौजज़ात की सूरत में, कि उनको ये फील हो गया कि ये कोई अनयूजल बच्चा है, ये आम बच्चा नहीं है। लिहाजा उन्होंने कहा कि इससे पहले कि कोई और मामला आए, उन्होंने अल्लाह के नबी को तकरीबन और 2 साल की मुद्दत करते हुए वापस आपके ख़ानदान के हाथ में डाल दिया। यहाँ आप देखिए कि थोड़ी सी बात करते हैं कि दिल खुला, धोया गया, वापस बंद हुआ। आज लोग करते हैं ओपन हार्ट सर्जरी, ये कहाँ से दलाइल मिलते हैं? इस्लाम की बुनियाद पे आप देखिए कि आज जितनी दुनियावी तरक्की है ना, उसके भी रास्ते खुलते हुए दिखते हैं। और वो जो जिस्म से एक हिस्सा काट के फेंक दिया गया था ना, वो शैतान का हिस्सा होता है जिस्म में, बचपन में अल्लाह के नबी के दिल को इन चीज़ों से पाक किया गया था। क्यों? क्योंकि जब किसी से अल्लाह ने कोई बड़ा काम करवाना होता है ना, तो उसको शैतानी चीज़ों से दूर करता है। मसलन जैसे अब आप सब हैं, आपने भी नीयत की है ना, तो आप सब भी अपने लिए इस चीज़ को नोट कर लें कि आप जितना इन शैतानी और बेकार चीज़ों से खुद को पाक करते जाएंगे ना, अल्लाह ताला आपको अपने काम का बना लेगा, गैर महसूस तरीके पे आपकी ज़िंदगी में ये होगा। अब आप ज़रा वापस नबी सल्लम पे आए, माँ के पास आए, कितने साल के बिछड़े हुए थे, बचपन से ऐसे ही था ना, कभी आए मिल गए, सिर्फ 2 साल गुजरे माँ के पास से। तो माँ, दादा और आपकी जो खादमा थी उम्मे ऐमन, इनके साथ मदीना आप गए, बच्चे थे, माँ गई, वहाँ वालिद की कब्र भी थी और दादा का भी ननिहाल वहीं था और माँ का मैका भी था। कहते हैं कि 1 महीना आप मदीना में रहे और रास्ते में आपकी वालदा बीमार हो गई, अबवा नाम के मुकाम पर पहुंची तो माँ का भी इंतकाल हो गया। क्या कहेंगे आप उस बच्चे को, 6 साल का बच्चा, पहले बाप और फिर माँ की मोहब्बत से महरूम है। हमें तो आज कॉम्प्लेक्स ही नहीं छोड़ते, ये नहीं मिला, हम तो ये रोते रहते हैं माँ बाप के सामने, जी हमें प्यार ही नहीं अपने दिया, जी आप हमारा ख्याल नहीं रखती, जी आप तो वो बड़ी बहन से ज़्यादा प्यार करती हैं, वो जी आप तो भाई को प्यार करती हैं। इधर देखिए कि दो जहानों का बादशाह जिसको अल्लाह बनाने वाला है, वो बचपन में ही माँ और बाप से महरूम है। और आज लोग कहते हैं हाय बाप नहीं रहा, अब इसको क्या मिलना है, हाय ये बेचारा यतीम, हाय माँ नहीं रही। देखिए खैर मिली कि ना मिली, अल्लाह ताला इन दुनियावी सहारों से क्यों बेनियाज कर रहा था पता है आपको? अल्लाह ये दिखाना चाहता था कि जिसका सहारा मैं बन जाऊं, फिर सारी दुनिया भी उसको छोड़ दे तो कुछ नहीं होगा। ये हमारे यहाँ एक बात अपने मारूफ सुनी हुई है कि अल्लाह के नबी का साया नहीं था, कुछ लोग सोचते हैं ना, वो असल में ये गलती खाते हैं, ये साया नहीं था, बचपन में बाप का साया नहीं था, फिर माँ के साये से महरूम हुए, दादा के साये शफकत में आए, 2 साल बस इधर गुजरे। अब देखिए 2-2 साल के वक्फे पे सारी मौतें हो रही हैं, इतनी तकलीफ थी बहू के मरने की, बेटे के, अब बच्चा भी पास है, इतनी मोहब्बत की अल्लाह के नबी से दादा ने, कहते हैं कि चूंकि वो सरदार थे, जिस जगह वो बैठते थे वहाँ कोई और नहीं बैठ सकता था, हरम में खाना काबा के पास उनका डेरा लगता था, लेकिन अल्लाह के नबी सीधा जाके उनकी गोद में बैठ जाते थे, जब लोग उनको उठाना चाहते तो कहते नहीं मेरे इस बच्चे को ना छेड़ो, इसकी बड़ी शान है, इसकी शान बड़ी निराली है, बचपन से अल्लाह दिखाता है। लेकिन 8 साल और 2 महीने आपकी उम्र मुबारक हुई, 8 बरस 2 महीने और 10 दिन के अब्दुल मुत्तलिब भी चले गए, आप किसकी बात करते हैं, प्यारे सब चलते जा रहे हैं, अब वो मासूम बच्चा दुर्रे यतीम कितने हाथों से होता, वो 8 साल की उम्र में चचा के हाथों में आ गया। आज आप कहते हैं जी इतनी ठोकरों और इतनी महरूमियों में पलने वाले लोग तो क्रिमिनल बन जाते हैं, उनको क्या मिलना है, लेकिन आप गौर करके देखें कि अल्लाह किस तरह नबी को इन सारे सहारों से बेनियाज करते हुए अपना नियाजमंद कर रहा है। चचा जो अबू तालिब थे, उन्होंने आपकी कफालत का बेड़ा उठाया, सगे भाई थे, मालदार तो नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने इतनी बरकत दी नबी सल्लम को पालने की वजह से, कहते हैं कि इनके घर में एक आदमी के हिस्से का जो खाना होता था ना, वो पूरे कुंबे के लिए काफ़ी हो जाता था, वही नबी है बरकतों वाला आज भी है, और आप खुद भी सब्र और कनात वाले थे और सब कुछ मिलता भी कनात पर ही है। आपको पता है कि नबी सल्लम ने चचा के इस एहसान का बदला कैसे उतारा, चूँकि चचा ने आपको पाला है मुश्किल वक्त में, तो अबू तालिब इतने कसीरुल अयाल यानी बच्चों वाले थे कि अपने ही बच्चों का खर्चा नहीं पूरा कर पाते थे, तो अल्लाह के नबी ने बड़े होकर हज़रत अली को गोद ले लिया, जिस चचा ने बचपन में इनको पाला उस बच्चा का बेटा अल्लाह के नबी ने पाला। अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बचपन से अल्लाह के नबी के साथ रहने का मौका मिला कि आपने कहा कि मैं इसको पालूंगा, तो इससे आप देखिए कि क्या गुर्बत थे जिसमें अल्लाह के नबी पल रहे थे। तकरीबन आपकी उम्र मुबारक 12 साल की हुई, अब आप सोचिए ये कौन सी होती है, टीन एज का कुर्ब है, धूम के आती है, झूम के आती है जवानी हम पे। अल्लाह के नबी सल्लम तकरीबन 12 साल, बास कहते हैं कि 2 महीने 10 दिन ऊपर भी थे, तो अबू तालिब तिजारत के लिए एक जगह गए, इरादा किया, दिल में आया कि हाय इस भतीजे को घर छोड़ जाऊं, ना वो छोड़ना चाह रहे थे ना अल्लाह के नबी उनके बगैर रहना चाह रहे थे, कहा चलो मेरे साथ ही चलो। اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ساتھ گئے، آپ کو پتا ہے کہ ملک شام میں اس وقت یہود رہتے تھے، اور یہود کا اس وقت کے مسلمانوں کے ساتھ تھوڑا سا گڑبڑ کا معاملہ تھا. کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو بصرہ نام کا جو شہر ہے وہاں پہنچے تو بحیرہ نام کا ایک عیسائی راہب تھا اپنے گرجے سے باہر نکل آیا، قافلے کے درمیان سے گزر کر اللہ کے نبی کے پاس گیا، آپ کا ہاتھ پکڑا، ابو طالب سے کہنے لگا اس بچے کو واپس لے جاؤ، یہ بچہ اپنے وقت کا سردار بنے گا اور یہ وہ بچہ ہے جس کی خبریں ہماری کتابوں میں ہیں. بہت ساری روایتیں ملتی ہیں کہ اس نے دیکھا کہ درخت جھک رہے ہیں، اب اللہ نے جیسے چاہا اشارہ دلوا دیا، یعنی وہ چونکہ اصل راہب اپنے دین کو صحیح سمجھتا تھا، اس نے پہچان لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ نبی بنیں گے. پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہا کہ آپ کو نہیں پتا جب آپ اس گھاٹی سے گزرے کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا نہیں تھا کہ جو سجدے کے لیے نہ جھک گیا ہو، یہ چیزیں جو ہے یہ نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتی. پھر کہنے لگا کہ آپ ان کا اشکندہ دکھائیں، جب کندھے سے کپڑا ہٹائے نا تو وہاں آپ کے مہر نبوت تھی، اس طرح چھوٹی سی کالی سی گھٹی تھی آپ کے یہاں پہ. تو جب وہ دیکھا کندھے کے نیچے جو نرم ہڈی ہوتی نا ادھر سیب کی طرح سے ایک چیز تھی، وہ دیکھی تو کہا یہ دیکھے ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ جو آخری نبی بنے گا اس کی کمر پہ مہر نبوت ہوگی. خوب کھلایا پلایا، کہنے لگا دیکھیں جس طرح میں نے پہچانا ہے نا تو اور بہت سارے یہود بھی اس کو پہچان لیں گے، اور اس بچے کی جان کو خطرہ، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو آگے لے جائیں اس کو واپس بھیج دیں. یہ دیکھیں آپ کا بچپن تھا جس میں آپ کے یہ سارے اشارے ہمیں دکھتے ہوئے مل رہے ہیں، اور لہٰذا پھر اب ابو طالب جو تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے واپس بھیج دیا، آگے نہیں بھیجا. یہاں سے آپ دیکھیے کہ ہمارے نبی کا بچپن بھی عام لوگوں سے کتنا مختلف تھا، اور جوانی تو کیا جوانی تھی. یہاں تک جو سنا اس پہ کوئی بات کریں، کچھ شیئر کیجیے.
ابھی آپ نے اتنی خوبصورت طریقے سے جیسے آپ سنتی اسٹوری سے بچے کو کیسے بتانا چاہیے
کہ نبی کو دیکھے کیا تھا اور آپ کیسے، اور آپ دیکھیں کہ ہم اتنی لائٹ سٹوری پڑھیں کہ یہ آج ساری آپ شیئر کر سکتے ہیں جا کے بچوں سے، میاں سے، اور کتنے لوگ ہیں سچی بات ان کو یہ باتیں یاد بھی نہیں ہوں گی. یہ جو اس میں نام تھوڑے سے لکھائیں یا بک سے جا کے ہائی لائٹ کر لیجئے گا، لیکن کہانی کی طرح سنا رہی ہوں تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو زیادہ اچھا لگ رہا ہے نا. تو بعض دفعہ ہم بڑی بڑی باتیں سمجھنا چاہتے ہیں، بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں، دین کا نام آتا ہے ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہمیں فقہی باتیں کرنی ہیں. آپ کئی لوگ ہیں جو کورس کرنا چاہتے ہیں نہیں آتے، پتہ نہیں جی آپ کی فقہ کیا، آپ کا مسلک ہے، آپ کو پتہ چل ہی رہا کیا مسلک ہے. جتنی دیر بیٹھے ہیں کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ جو کسی مسلمان کو ضروری نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب پیار کرتے ہیں نا. تو بعض دفعہ شیطان ایسے دھوکے ڈالتا ہے جو کہتا ہے، بلکہ آپ سب کے لیے بھی یہ موقع ہے تو آپ اپنی دوستوں کو لائیں، سب کو بلائیں آنے کے لیے، یہاں کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں، بیٹھے سنے جتنی دیر بیٹھے چلے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سیرت کے شوق میں ہی لوگ آئیں اور قرآن کے کورس سے جڑ جائیں، رائٹ؟ تو اب ہمارے لیے سارے میں عمل کی بات کیا ہے. دیکھیں کہ ظاہر آپ کہیں گے کہ اللہ کے نبی کا بچپن تھا، اب ہم تو بڑے ہو گئے، لیکن ہمارے لیے اس پورے حصے میں جو عمل کی باتیں ہیں کہ نبی کی قدر کرنی ہے. اگر آپ کے وجود سے اللہ نے اس دور میں بی بی حلیمہ کو فائدہ دیا اور دوسروں تک خیر پہنچی تو آج ہم بھی اس سے لیں گے. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی دیکھیں گے.